एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी पहली मेजबान और आज मेरे साथ है हमारे एक्सपर्ट।
नमस्कार। और आज हम गोता लगा रहे हैं एक ऐसी किताब में जिसने कह सकते हैं कि मानव स्वभाव और समाज के बारे में हमारी समझ पर एक गहरा असर डाला है।
जी हाँ, सिगमंड फ्रॉयड की वो मशहूर और हाँ थोड़ी विवादास्पद किताब भी, सिविलाइजेशन एंड इट्स डिस्कंटेंट्स, मतलब सभ्यता और उसके असंतोष।
बिल्कुल। देखिए, किताब लिखी तो गई थी करीब 100 साल पहले, 1929-30 के आसपास, लेकिन इसका जो मूल सवार है ना,
हाँ,
वो आज भी उतना ही मौजूद है, शायद पहले से भी ज्यादा। कि भाई, इतनी तरक्की हो गई, इतनी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी हम इंसान अक्सर अंदर से एक बेचैनी, एक असंतोष क्यों महसूस करते हैं?
सही बात है। क्या हमारी खुशी की तलाश और समाज की जो जरूरतें हैं वो आपस में टकराती हैं?
यही सवाल फ्रॉयड उठाते हैं।
और देखिए, आजकल हम कितनी बातें करते हैं, मेंटल हेल्थ, पर्सनल हैप्पीनेस, समाज का प्रेशर।
हाँ,
फ्रॉयड के ये विचार हमें इन सब मुद्दों को एक, क्या कहते हैं, एक अलग एंगल से देखने का मौका देते हैं। तो चलिए खोलते हैं इस किताब को और समझने की कोशिश करते हैं।
हाँ बिल्कुल। लेकिन पहले जरा लेखक के बारे में जान लें, सिगमंड फ्रॉयड।
हाँ जरूर।
फ्रॉयड, जैसा हम जानते हैं, ऑस्ट्रिया के न्यूरोलॉजिस्ट थे। 1856 से 1939 तक उनका जीवन काल रहा और उन्हें मनोविश्लेषण यानी साइको एनालिसिस का जनक माना जाता है।
सही। और जब उन्होंने ये किताब लिखी वो पहले ही काफी मशहूर हो चुके थे अपने सपनों के विश्लेषण पर काम से और मन की संरचना, वो ईड ईगो सुपर ईगो वाले विचारों से।
बिल्कुल। पर यहाँ दिलचस्प बात यह है कि फ्रॉयड कोई समाजशास्त्री नहीं थे।
हाँ, वो तो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे ना।
एग्जैक्टली। वो मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने क्या किया, जैसे वो अपने मरीजों के मन का विश्लेषण करते थे, उसी लेंस से उन्होंने पूरी सभ्यता को देखने की कोशिश की।
अच्छा, ये तो काफी अनूठा नजरिया है।
हाँ, मतलब समाज के कानून, धर्म, नैतिकता, इनको उन्होंने सिर्फ सामाजिक ढांचे की तरह नहीं देखा। उनके लिए ये सब तरीके थे जिनसे इंसान अपनी अंदरूनी आदिम इच्छाओं को काबू में रखता है।
कौन सी इच्छाएं?
खासकर दो, सेक्स की इच्छा जिसे वो लिबिडो या एरोस कहते थे, और दूसरी आक्रामकता या विनाश की इच्छा, थानाटोस।
ओह, और ये भी जरूरी है याद रखना कि वो लिख कब रहे थे। पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था, यूरोप में फासीवाद।
बिल्कुल। वो माहौल, उसकी छाया उनके लेखन पर दिखती है। एक तरह की गंभीरता है, एक तात्कालिकता है। वो इंसान के अंधेरी साइड को, उसकी आक्रामक प्रवृत्तियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे।
तो अगर इस किताब का एक निचोड़ निकालना हो एक लाइन में, मेरे ख्याल से ये किताब इस बात की पड़ताल है कि एक व्यक्ति होने और एक समाज का हिस्सा होने के बीच जो मनोवैज्ञानिक खींचतान चलती है वो क्या है, और सभ्य होने के लिए हमने क्या मनोवैज्ञानिक कीमत चुकाई है।
कीमत चुकाई है। हाँ, उनका जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो यही है कि सभ्यता हमें सुरक्षा देती है, व्यवस्था देती है, विकास के मौके देती है, ये सब ठीक है।
हाँ।
लेकिन बदले में वो हमसे हमारी सबसे गहरी, सबसे शक्तिशाली सहज इच्छाओं का दमन मांगती है, उनको दबाना पड़ता है।
खासकर वो दो इच्छाएं जिनका आपने जिक्र किया, ईरोस और थैनाटोस।
जी हाँ, प्रेम और जीवन की इच्छा और आक्रामकता और विनाश की इच्छा। फ्रॉयड कहते हैं कि इन्हीं इच्छाओं को दबाने की वजह से हमारे अंदर एक स्थायी असंतोष, एक डिसकंटेंट पैदा होता है।
तो मतलब फ्रॉयड का जवाब तो काफी निराशाजनक लगता है फिर। ये जो बेचैनी है ये कोई गड़बड़ी नहीं बल्कि सभ्य होने का नतीजा है।
एक तरह से हाँ, वो कहते हैं कि सभ्यता और हमारे व्यक्तिगत खुशी की तलाश के बीच एक तनाव, वो हमेशा बना रहेगा। ये कोई आसानी से हल होने वाली चीज नहीं है।
चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। फ्रॉयड अपने तर्क को आगे कैसे बढ़ाते हैं?
रिश्ते ये सब दुख के स्रोत भी हैं, इनसे हमें तकलीफ भी मिलती है
और खुशी मिलती भी है, तो वो टिकती नहीं है ना, क्षणिक होती है।
बिल्कुल, वो यही कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम दुख से बचने के या उसे कम करने के तरीके ढूंढते हैं।
जैसे?
कई तरीके हैं, फ्रॉयड गिनाते हैं, जैसे दुनिया से खुद को अलग कर लेना, या नशे में डूब जाना, या फिर अपनी ऊर्जा को कला, विज्ञान, काम में लगा देना, जिसे वो कहते हैं उदात्तीकरण या सब्लिमेशन।
अच्छा, सब्लिमेशन।
हाँ, या फिर प्रेम, किसी से प्यार करना। लेकिन फ्रॉयड कहते हैं कि इनमें से कोई भी तरीका परफेक्ट नहीं है, कोई भी स्थायी गारंटीड खुशी नहीं दे सकता, सबकी अपनी सीमाएं हैं, अपने दुख हैं।
ठीक है, तो ये तो हुई व्यक्तिगत कोशिश है। लेकिन इसमें सभ्यता कहाँ आती है?
यही फ्रॉयड एक दिलचस्प बात कहते हैं। वो कहते हैं कि सभ्यता, जो असल में हमें बाहरी खतरों से, प्रकृति की बेरहमी से बचाने के लिए बनी थी,
हाँ,
वो खुद भी दुख का एक बड़ा कारण बन जाती है।
वो कैसे?
सभ्यता तो अच्छी चीज है ना?
अच्छी है, उसके फायदे हैं, सौंदर्य, सफाई, व्यवस्था, विज्ञान, कला, ये सब सभ्यता की देन है।
लेकिन फ्रॉयड पूछते हैं इसकी कीमत क्या है?
कीमत मतलब नियमों का पालन करना।
हाँ, सभ्यता को बनाए रखने के लिए नियम चाहिए, कानून चाहिए, और ये नियम हमारी सहज आजादी पर रोक लगाते हैं। हमें अपनी इच्छाओं को, अपनी मर्जी को कंट्रोल करना पड़ता है। फ्रॉयड तो सभ्यता की शुरुआत पर भी कुछ अंदाजा लगाते हैं। वो कहते हैं कि शायद प्रेम ने, इरोस ने लोगों को साथ लाया, परिवार बने, फिर समुदाय।
हाँ, ये तो समझ आता है।
लेकिन जैसे जैसे लोग ज्यादा हुए, समुदाय बड़े हुए, तो जरूरत पड़ी कि हर किसी की यौन इच्छाओं को थोड़ा सीमित किया जाए, ताकि समाज में झगड़े ना हों, एकता बनी रहे।
अच्छा,
इसे उन्होंने लक्ष्य बाधित प्रेम कहा, एमिनहिबिटेड लव। जैसे दोस्ती, भाईचारा, स्नेह, ये भी प्रेम का ही रूप है, पर इसका लक्ष्य सीधा यौन संतुष्टि नहीं। फ्रॉयड मानते हैं कि ये हमारी सहज प्रवृत्ति का पहला बड़ा बलिदान था सभ्यता के लिए।
ये तो प्रेम की बात हुई, लेकिन आपने एक और प्रवृत्ति का जिक्र किया था, आक्रामकता, थैनेटोस।
हाँ, और फ्रॉयड के लिए ये बहुत बहुत अहम मुद्दा है। वो इस रोमांटिक ख्याल को नहीं मानते कि इंसान बस अच्छा और शांति प्रिय होता है।
नहीं
नहीं, वो कहते हैं कि हमारे अंदर दूसरों पर हावी होने, उन्हें नीचा दिखाने, उन्हें चोट पहुंचाने की भी एक गहरी प्रवृत्ति है। ये थानाटोस यानी मृत्यु प्रवृत्ति का ही एक पहलू है।
बाप रे, ये तो काफी डार्क व्यू है।
है, और फ्रॉयड कहते हैं कि यही आक्रामकता सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। समाज को अपनी बहुत सारी एनर्जी इसी को कंट्रोल करने में लगानी पड़ती है।
तभी वो कहते हैं कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो वाली बात।
हाँ, वो कहते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक रूप से लगभग असंभव मांग है, क्योंकि हमारी नेचुरल टेंडेंसी ऐसी नहीं है। हम स्वार्थी भी हैं, आक्रामक भी हैं।
तो फिर अगर हम इतने आक्रामक हैं तो समाज चलता कैसे? हम एक दूसरे को खत्म क्यों नहीं कर देते?
हाँ, यही फ्रॉयड अपने सबसे जरूरी और शायद सबसे ओरिजिनल आइडिया पर आते हैं। वो है अपराध बोध, गिल्ट।
अपराध बोध, गिल्ट, वो कैसे?
फ्रॉयड का तर्क है कि सभ्यता हमारी इस आक्रामकता का क्या करती है, अगर हम इसे बाहर नहीं निकाल सकते, दूसरों पर नहीं निकाल सकते,
तो
सभ्यता इसे अंदर मोड़ देती है, हमारे खुद के खिलाफ।
हमारे खुद के खिलाफ मतलब?
मतलब ये कि हमारे अंदर मन का एक हिस्सा विकसित होता है, सुपर ईगो, जिसे हम जमीर या अंतरात्मा कह सकते हैं।
हाँ, सुपर ईगो।
ये सुपर ईगो हमारी बाहरी सत्ता, जैसे माँ बाप या समाज के नियमों को इंटरनलाइज कर लेता है, अंदर ले लेता है, और फिर ये हम पर नजर रखता है।
अच्छा,
और ये सिर्फ हमारे बुरे कामों के लिए हमें सजा नहीं देता, ये हमारी बुरी इच्छाओं, बुरे विचारों के लिए भी हमें सजा देता है।
और वो सजा क्या है?
वो सजा है अपराध बोध की भावना, गिल्ट, एक लगातार महसूस होने वाली बेचैनी कि हम काफी अच्छे नहीं हैं, हमने कुछ गलत किया है या गलत सोचा है।
तो आप ये कह रहे हैं कि हम जितने ज्यादा सभ्य बनते हैं, जितने ज्यादा नियमों को मानते हैं,
हाँ,
उतना ही हमारा सुपर ईगो मजबूत होता जाता है और उतना ही ज्यादा हम गिल्ट महसूस करते हैं।
बिल्कुल, यही फ्रॉयड का चौंकाने वाला निष्कर्ष है। अपराध बोध सभ्यता का सबसे ताकतवर हथियार है हमारी आक्रामकता को कंट्रोल करने का। लेकिन यही हमारे स्थायी असंतोष का सबसे बड़ा कारण भी है। हम एक तरह की अंदरूनी जेल में रहते हैं।
बाप रे, ये तो बहुत भारी कीमत है।
हे, सभ्यता मुफ्त में नहीं मिलती।
और किताब के आखिर में?
आखिर में फ्रॉयड व्यक्ति के विकास और पूरी सभ्यता के विकास में एक पैरेलल देखते हैं। जैसे एक बच्चे का सुपर ईगो विकसित होता है, वैसे ही समाज का भी एक तरह का कल्चरल सुपर ईगो बन जाता है, नैतिक मानक, आदर्श वगैरह।
और वो ये भी पूछते हैं कि क्या समाज भी न्यूरोटिक हो सकता है?
हाँ, क्या पूरी सभ्यता ही बीमार हो सकती है? और पहले विश्व युद्ध के बाद विनाश के नए नए हथियार देखकर वो भविष्य को लेकर बहुत आशावादी नहीं थे। वो सवाल उठाते हैं कि क्या ईरोस यानी जीवन की प्रवृत्ति अपने दुश्मन थानाटोस यानी विनाश की प्रवृत्ति पर जीत हासिल कर पाएगी?
और जवाब?
जवाब वो खुला छोड़ देते हैं, अनिश्चित।
तो इस पूरी बातचीत से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं, पहली तो यही कि व्यक्ति और समाज के बीच एक टकराव तय है।
हाँ, एक बुनियादी अंतर्निहित संघर्ष। सुरक्षा चाहिए तो आजादी की, अपनी सहज इच्छाओं की कुर्बानी देनी होगी, और इससे असंतोष पैदा होगा।
ये तो हम रोज देखते हैं, खासकर अपने यहाँ भारत में, परिवार की उम्मीदें, समाज क्या कहेगा।
बिल्कुल। करियर, शादी, लाइफस्टाइल, हर जगह ये तनाव दिखता है।
व्यक्तिगत इच्छा बनाम सामाजिक अपेक्षा।
दूसरी बड़ी बात हुई अपराध बोध की। ये सिर्फ पर्सनल फीलिंग नहीं, एक सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म है।
जी।
आक्रामकता को अंदर मोड़ देना सुपर ईगो के जरिए। समाज के नियम हमारे दिमाग के अंदर ही लागू हो जाते हैं।
हाँ, वो लोग क्या कहेंगे वाला डर। हाँ। या कोई काम करके जो मन में कचोटता रहता है,
वही वो अंदर का जज, आपका सुपर ईगो।
तीसरा पॉइंट था इरोज और थानाटोस का संघर्ष।
हाँ, जीवन और मृत्यु की प्रवृत्तियों का बनाना और बिगाड़ना, प्यार और नफरत, ये हमेशा चलते रहते हैं, हमारे अंदर भी, समाज में भी। सभ्यता इसी बैलेंस को साधने की कोशिश है।
रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखता है ये। कभी कुछ क्रिएटिव करने का मन करता है, रिश्ते जोड़ने का,
वो इरोस।
और कभी बस गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, सब तोड़फोड़ देने का मन,
वो थानाटोस। समाज में भी देखें तो शांति की कोशिशें बनाम युद्ध और हिंसा।
चौथा सबक, शायद परमानेंट खुशी जैसी कोई चीज है ही नहीं।
फ्राइड तो यही मानते थे, खुशी आती जाती है, वो क्षणिक है। दुख, संघर्ष, ये जीवन का हिस्सा है। सभ्यता खुशी का वादा नहीं करती, वो शायद दुख को मैनेज करने लायक बनाती है।
ये आज के हमेशा पॉजिटिव रहो वाले कल्चर के लिए एक जरूरी रिमाइंडर है शायद।
बिल्कुल। और पांचवा पॉइंट था सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में।
हाँ, कि आर्ट, साइंस, ये सब हमारी दबी हुई इच्छाओं की ताकत को वो सब्लिमेट करने से आते हैं।
सही, उदात्तीकरण। हम अपनी सहज इच्छाओं की सीधी संतुष्टि छोड़कर अपनी ऊर्जा को इन कामों में लगाते हैं। ये महान तो है, पर इसकी भी एक कीमत है, सहज संतुष्टि का त्याग।
जैसे कोई अपना पैशन छोड़कर सेफ करियर चुन ले।
हाँ, ये भी एक तरह का उदात्तीकरण या समझौता कहा जा सकता है, सामाजिक स्वीकृति या सफलता के लिए।
वाकई इस किताब में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। कुछ पंक्तियां तो एकदम क्या कहते हैं, हिट करती हैं। जैसे वो सवाल,
कौन सा,
क्या सांस्कृतिक विकास मानव आक्रमणता और आत्मविनाश की प्रवृत्ति पर नियंत्रण पा सकेगा?
ओ हाँ, ये तो आज भी सबसे बड़ा सवाल है। एटम बम से लेके क्लाइमेट चेंज तक, इंसान की ये विनाशकारी शक्ति, क्या हम इसे काबू कर पाएंगे? फ्रॉयड 100 साल पहले पूछ रहे थे, हम आज भी पूछ रहे हैं।
और एक और बात जो मुझे लगी, व्यक्ति की स्वतंत्रता सभ्यता का उपहार नहीं है, ये किसी भी सभ्यता के होने से पहले सबसे बड़ी थी।
बिल्कुल, हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमने व्यवस्था और सुरक्षा के बदले क्या छोड़ा है, ये याद दिलाता है उस कीमत की।
और वो अपराध बोध वाला रूपक, सभ्यता आक्रामकता की खतरनाक इच्छा पर नियंत्रण पाती है, व्यक्ति के भीतर एक एजेंसी स्थापित करके जो उस पर नजर रखती है, जैसे किसी जीते हुए शहर में एक चौकी।
हाँ, कितना पावरफुल मेटाफर है। सुपर ईगो एक अंदरूनी पुलिस चौकी की तरह है, हम खुद ही अपने जेलर बन जाते हैं।
ये दिखाता है कि सोशल कंट्रोल कितना गहरा जा सकता है।
सही। और आखिर में खुशी पर वो थोड़ी कड़वी सच्चाई, ऐसा लगता है कि मनुष्य को खुश होना चाहिए, ये इरादा सृष्टि की योजना में शामिल नहीं था।
हाँ हाँ हाँ, ये सुनने में शायद थोड़ा निराशावादी लगे, पर शायद इसमें एक तरह की राहत भी है कि ठीक है, अगर मैं हर वक्त खुश नहीं हूं तो ये नॉर्मल है, ये कोई मेरी कमी नहीं।
बिल्कुल, ये हमें जीवन की हकीकत को स्वीकार करने में मदद कर सकता है, हमेशा एक परफेक्ट खुशी के पीछे भागने के बजाय। तो अब सवाल यह है कि इन सब गहरे, कभी कभी डिस्टर्बिंग लगने वाले विचारों का हमारी रोज की जिंदगी में क्या काम?
हाँ, क्या कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल है इनका?
मुझे लगता है हाँ, जैसे अपने रिश्तों को समझने में। अगर हम ये समझें कि हमारे पार्टनर या परिवार वालों की जरूरतों और हमारी अपनी इच्छाओं में टकराव होना स्वाभाविक है,
हाँ,
तो शायद हम ज्यादा सब्र रख सकते हैं या अपनी उम्मीदों को थोड़ा यथार्थवादी बना सकते हैं।
और काम की जगह पर
वो सब्लिमेशन वाला आइडिया।
हाँ,
अपने काम में मीनिंग ढूंढना, अपनी क्रिएटिव एनर्जी लगाना, ये शायद उस अंदरूनी असंतोष को कम करने का एक तरीका हो सकता है। क्यों कुछ लोग अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं? शायद ये उसका एक जवाब है।
और पेरेंटिंग में, बच्चों की परवरिश में,
ये जरूर ध्यान रखने वाली बात है। बच्चों को सही गलत सिखाना जरूरी है, पर उन पर गिल्ट का इतना बोझ ना डाल दें कि वो दब जाएं। एक हेल्दी सुपर ईगो बने जो गाइड करे पर कुचले नहीं, ये बहुत नाजुक बैलेंस है।
सही कहा। और मेंटल हेल्थ के लिए भी ये जरूरी है, अपनी एंग्जाइटी या डिप्रेशन को सिर्फ अपनी नाकामी ना मानना।
हाँ, ये समझना कि इसमें सामाजिक दबावों, अंदरूनी संघर्षों का भी रोल हो सकता है, इससे शायद खुद के प्रति थोड़ी सहानुभूति बढ़े।
और बड़े लेवल पर समाज को समझने में, जैसे राष्ट्रवाद या समूहों के बीच नफरत।
बिल्कुल, फ्रॉयड हमें इन चीजों के पीछे काम कर रही मनोवैज्ञानिक ताकतों को देखने में मदद करते हैं। आक्रामकता, ग्रुप आइडेंटिटी, कलेक्टिव गिल्ट, ये सब।
इस पूरी बातचीत से मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख है वो ये कि ये असंतोष ये कितना यूनिवर्सल है। ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये इंसान होने, सभ्य होने का हिस्सा है। इससे थोड़ी तसल्ली सी मिलती है।
हाँ, ये बात सही है। और मेरे लिए शायद वो इरोस और थानाटोस का आइडिया, जीवन और मृत्यु की शक्तियों का ये लगातार चलना, ये जिंदगी के कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। और शायद ये मानना कि हमेशा खुश रहना ही लक्ष्य नहीं है, ये भी एक तरह से राहत देता है।
हाँ।
तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं हम सबके सोचने के लिए। फ्रॉयड ने ये किताब तब लिखी थी जब दुनिया ने पहली बार मास डिस्ट्रक्शन देखा था। आज हम डिजिटल युग में हैं, ज्यादा कनेक्टेड पर शायद ज्यादा अकेले भी।
हाँ।
इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है पर समझ ज्यादा कम हो रही है। तो ऐसे में क्या ये जो इरोस और थानाटोस का संघर्ष है, ये कोई नया और ज्यादा उलझावा रूप ले रहा है? सोचने वाली बात है।
बिल्कुल, जरूर सोचिएगा इस पर। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।